ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। उच्चैः जनो दैवहतान्यते युज्यते हर्षशोकाभ्याम् तथा त्याग्यां करोमि ते। सवेरे हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार राजा कंस विविध मनोरथ कर रहा था, केसी को भेज करके, और इसके बाद चारुण मुस्टिक सौ तोसल आदि के साथ बैठा, हाथियों के महावतों को बुलाया, सचिव को बुलाया, और सबसे ये योजना बना रहा था कि ऐसा करो कि यहाँ पर मल्ल रंग पहलवानी का फेस्टिवल करो और इसमें बुलाना है कृष्ण बलराम को, और यहाँ आने पर तुम लोग ऐसे ऐसे बध कर दो, खास करके कुल्या पेड़ हाथी की हाथी पर जो चलाता था उस महावत से उसने विशेष जोर दे रखा है, और कहा कि यदि हाथी से ये लोग न मारे जाए तो फिर पहलवान मारेंगे। जब 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबले तीर मार दिया जाएगा तो फिर बात है फिर पहलवान मारेंगे। तो भय हमेशा बना रहता था, कंस भया, कंस को भगवान से जितना द्वेष था उससे कई गुना ज्यादा भय था, शिशुपाल को द्वेष था, खाते बिल्कुल द्वेष था और भय बिल्कुल नहीं, इसके उसको बिल्कुल भय नहीं था। राजकीय सभा में भरी सभा में लगा गाली देने भगवान को, मरने का कोई डर नहीं था, और कंस को मरने का बहुत भय, मरना चाहता नहीं, द्वेष तो ऐसे देखा है तो था, बीज तो उसका द्वेष ही है लेकिन भय अधिक था। इस प्रकार वह कह रहा था उन लोगों से, बाद में अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके और बहुत ही मैत्री भाव से ऊपर से दिखा करके कहने लगा कि आप चले जाइए, दोनों को लाइए। अंतिम वाक्य कंस का है, धनुर्मुख निरीक्षा निरीक्षणार्थम, धनुर्मुख निरीक्षार्थम द्रष्टुम जगु पुरस्य। आप जाकर कहिएगा धनुष यज्ञ है, उत्सव है, सब लोग आए, निरीक्षणार्थ धनुष मत देखें, धनुष जग को अच्छी तरह से देखें और जगतपुर की शोभा देखेंगे। यह भी एक इसकी चालाकी थी, और क्रूर जी से कहा कि जाकर कहिएगा कि जगतपुरी है और नंद भी तो जादव ही है, जैसा कि नारद जी ने कहा था, ऋषदेव जी के ज्ञाति हैं, भाई हैं, तो जादव होकर के जगतपुर की स्त्री नहीं देखेंगे क्या? और तो जानता था कि वास्तव में मधुपुर है, मधु का अर्थ मधु दैत्य, पहले वहां रहा था, इसीलिए मथुरा को मधुपुरी कहा था, अथवा जादव का एक भेद है मधु मधुबन से, वे लोग रहते थे इसलिए इसको मधुपुरी या मधुपुर कहते हैं। लेकिन कौन सा अपने भाव का संगोपन कर रहा है, छिपा रहा है, कह रहा है कि जादव नगरी है इसलिए सब जादव आ रहे हैं देखने के लिए, ये कहिएगा। अब ये मत कहिएगा कहीं भूल करके कि कंस की राजधानी है, राजा कंस के छवि भेंट होगी, ऐसा नहीं था। जदुपुर स्त्री बोलने में बहुत प्रवीण था, कौन शब्द कहाँ बोल दिया जाएगा उसका क्या असर होगा ये बहुत सतर्क है। दो बात कहिएगा बस, धनु मत निरीक्षार्थ दृष्टि जदुपुर स्त्री, वो तो बस इतना सुनकर ही चल रहे। तब अक्रूर जी कहते हैं, अक्रूर जी इसके मनोरथ को सुनते सुनते उठ गए, राजा तो कृष्ण बलराम को मारूंगा तो इसके बाद वसुदेव को मारूंगा, नंद को मारूंगा, जितने जादव सबको मारूंगा, और जितने भी देवताओं के पक्ष के राजा हैं, जैसे द्रुपद युधिष्ठिर, इन सबका वध करूंगा, और इसके बाद हम रहेंगे, आप रहेंगे और हमारे सचिव रहेंगे, खूब खूब कर पृथ्वी भोग करेंगे, कोई रहेगा नहीं तो मार दिए जाएंगे, हमारे आदमी रहेंगे, इस तरह का प्लान करो। तो क्रूर जी क्या कहते हैं, ये बात विचार लिए है यहाँ पर। क्रूर अक्रूर जी कहते हैं, राजन अपने जो विचार यहाँ दिया मनीषी, हम अपने मनीषा से, अपने दिमाग से अपने जो निश्चय किया मनीषा से किया, इसको मनीषी तम कर सब है। आपका ये सोचना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्व अवध्य मार्जनम, अवध्यन का अर्थ यहाँ मृत्यु, आप अपनी मृत्यु का परिहार करने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए जो सोच रहे हैं, ये वास्तव में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभ्य या सम्य दो पार्ट हैं, सभ्य का अर्थ भी समुचित होता है और सम्य का अर्थ भी समुचित होता है। तो आपने जो सोचा वो बहुत अच्छा किया, अरे कौन होगा जो अपनी मृत्यु नहीं टालना चाहे, लेकिन हित का कुछ उद्देश्य कर रहे हैं कि परंतु सिद्धि सिद्ध सिद्धे समम को गया, व्यक्ति को चाहिए कि अगर सफलता मिले और सफलता न भी मिले तब भी सम रहना चाहिए, यही तो उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि दैव ही फल साधन है। मनुष्य का विचार या उसकी मनीषा बुद्धि इस काम नहीं करता है, होता है वही जो ऊपर से लिखा है। वास्तव में इस संसार में दो धारा चल रही है, तो ईश्वर इस जगत का निर्माण किया है, तो किसको क्या देगा, कैसे जिलाएगा, खिलाएगा, कब मार देगा, वो जानता है। दूसरी बात यह है कि वो रच रच करके इस जगत में सभी जीवों के कर्म को देखता है, तो कर्म के अनुसार किसी को मृत्यु देता है, शरीर देता है, भोग देता है। तो भगवान का प्लान है जीवों के कर्म के अनुसार, जीव चाहे कितना भी प्लान करे, इच्छा करे, सफलता दैव पर ही निर्भर, व्यक्ति का पुरुषार्थ काम नहीं करता, अंततः दैव ही विजयी है। तो महाराज आप तो ठीक कर रहे हैं, इस तरह से जो सोच रहे हैं उसमें अक्रूर जी सब कह दिए, कृष्ण मौलान को मारने का या करने का और करने का विचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु इतना अभिनिवेश नहीं करना चाहिए। फिर सिद्धम स्वामी जी कहते हैं, परंतु ये तावन अभिनिवेश ना करता है, जितना आप एकदम खो गए ऐसे करेंगे करेंगे, ऐसे मार करके, और हम रहेंगे, हमारे ससुर रहेंगे, हमारे मित्र रहेंगे, ये रहेंगे, बस कोई नहीं रहेगा हमारे को बाधा देने वाला, हमको खाएंगे पिएंगे घूमेंगे राज करेंगे, कभी मरेंगे नहीं, इतना नहीं सोचना चाहिए। अक्रूर जी ने कहा इतना अभिनिवेश नहीं करना चाहिए, अभिनिवेश होना चाहिए लेकिन इतना ज्यादा। श्री सिद्धो स्वामी जी कहते हैं, तथापि ये तावन अभिनिवेश अभिनिवेश न करते हुए, इतना ज्यादा अभिनिवेश न करते हुए। अभिनिवेश का अर्थ होता है अभित मितनावेश अभिनिवेश, पूरा पूरा तरह से आदमी विचारों में खो जाए, ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ऐसा करूंगा, केवल प्लान बनाता है, ऐसा नहीं। कुछ ईश्वर के प्लान को देख करके संतोष करना चाहिए कि भगवान की इच्छा हो, उनका जो प्लान है वही चले, हम क्यों प्लान कर, प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए। इसी लोग आते सिद्धि या सिद्धि में सम रहना चाहिए, क्योंकि दैव ही फल देता है, ईश्वर ही फल देता है, अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। इस अभिनिवेश के विषय में एक छोटी सी कथा मैंने संस्कृत किताब में पढ़ा था। जो एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब ब्राह्मण, वो भीख मांगता था, भीख मांग मांग करके इकट्ठा किया था कुछ आटा या सत्तू जमा किया था कुछ, और जहाँ सोया था टूटी फूटी पलंग पर, खट पर, ऊपर एक शिकार छीते में लटका दिया था प्रभुचा पर, तो वो सोच रहा था ओ अब तो मेरे पास इतना आटा हो गया है, मैं इसको बेचूंगा, बेच करके फिर उससे ये सामान खरीदूंगा तो फिर उसको बेचूंगा, फिर उससे ये सामान खरीदूंगा उसको बेचूंगा, तो मेरे पास पैसा कुछ हो जाएगा, पैसा हो जाएगा तो मैं इसके बाद विवाह करूंगा, तो विवाह करूंगा ऐसे ऐसे रहूंगा, ऐसे रहूंगा इसके बाद पुत्र होगा। खूब मनोरथ किया एक डेढ़ घंटा तक, बच्चे को बहुत सुशील बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और कभी यदि शैतानी किया बच्चा तो उसको 10 लात उसको मैं लात से मारूंगा, ऐसा कहकर लात उठाया और लात लग गया उस घड़े पर जिसमें वो रखा गया, और घड़ा फूट गया, भर और सब भर से गिर गया सारा आटा, सारा मनोरथ वही भरा है, मेरा विवाह हो गया, लड़का हो गया, लड़के को लात भी मार दिए, सब ठीक है। इतना व्यक्ति को नहीं खो जाना चाहिए, समझना कि भगवान का कुछ प्लान है जगत रचने में, ऐसा नहीं है कि वो रच दिए और बस हमको छोड़ दिए कि तुम अपना प्लान करते रहो, देखना चाहिए कि ईश्वर की कुछ इच्छा है, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी चाहिए, कौन सी इच्छा कितनी विरुद्ध जा रही थी, यह करूंगा ऐसे रहूंगा मरूंगा नहीं भोगूंगा ये करूंगा, तो अपूर्व जी बहुत हित का उपदेश कर रहे हैं। श्रीपा सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, जदर्थम एकावंतम कालम अस दुष्टस्य अपि अनुकूले न सका मोषितम तत्फलम इदम प्राप्त। अपूर्व जी सोचे एकावंतम कालम, इतने काल तक मैं जिस उद्देश्य से इस दुष्ट की सेवा कर रहा था भगवान की कृपा से वह फल प्राप्त किया, जब ही उसने कहा कि कृष्ण भगवान को लाइए इस वक्त से, अखिल जी का मन तो अब चला गया गोकुल वासा नंद गांव चला गया, ये सोचने लगे तो अब फल मिला, बहुत प्रसन्न हुए। अतः अनेन मम तत्व तो हित में वकृतम, अक्रूर जी सोचने लगे कि वास्तव में इसने तो मेरा हित ही किया, मुझे रथ दे करके और गोकुल भेज रहा है तो मेरा हित किया है, तो मया आप हित में वक्तुम जुटे, अक्रूर जी ने सोचा कि मेरा भी कर्तव्य है कि कम से कम हित ही करना चाहिए, इसका जिसमें हित है वही बात बोलनी चाहिए, इसीलिए हित का उपदेश कर रहे क्योंकि इसने मेरा हित किया इसलिए इसका भी हित करना चाहिए, अथवा किंचित हिते अनुक्ते सति औदास्यम असंख्य विश्वासम अकृत्वा यदि माम अयम न प्रस्थापयत् अयम न प्रस्थापिष्यते तर्हि मम दीर्घासा न पूर्यत इति किंचित हितम वाच्यम इति आशयेन आह। अथवा कुर्जुन ये सोचा इसके प्रति मैं कुछ हित का हित की बात नहीं कहूंगा तो ये शायद उदासीन हो जाएगा, सोचे कुछ बोल नहीं रहा, मैं जो प्लान बताया ये बताया तो कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब इसका मन जाने का है नहीं, तो हो सकता है कि फिर अपना विचार रद्द कर दे, कल कह इसको नहीं, बहुत महसूस मनहूस आदमी कुछ बोला नहीं, इसका विचार बदल सकता है, तो हो सकता है हमको ना भेजे, इसीलिए उसकी बातों में कुछ हाँ में हाँ मिला देते ही तो उपदेश करो, तो कौन उसको विश्वास हो जाए कि मेरे ही भरित के विषय में पूर्ण जी बुरा दक्षित लगे हुए, इसलिए पहले कहते हैं बिल्कुल ठीक कह राजन संबोधन कर राजन मनुष्य कम शब्द आपका विचार बिल्कुल ठीक है, राजन शब्द से तत्पर्य लिख रहे हैं सनातन गोस्वामी, राजनीति वे राजनीति राज्यस्य राजदेहस्य च रक्षार्थम इदम उचितम राजन शब्द के द्वारा यह ध्वनित हो रहा है कि अक्रूर जी कहते हैं आप राजा हैं तो राज्य की और राजदेह रक्षा करनी ही चाहिए, यदि दो व्यक्ति को मार करके राजा की रक्षा हो जाती है तो कौन अंशी? ठीक है, ऊपर से ऐसा बोल रहे हैं। ठीक ठीक, आप राजा है ना, कोई अर्जेंडी आदमी तो है नहीं, उसके जीने मरने पर कोई बात नहीं है। आपका ये राज देह बहुत दुर्लभ है और राज्य भी बहुत विस्तार से है, इसीलिए राज्य की रक्षा के लिए और राज देह की रक्षा के लिए ये जो आपने विचार किया है बड़ा अच्छा है, लेकिन उसको सीमित कर रहे हैं आप। अपने मृत्यु को टालने का जो उपाय कर रहे हैं ये बहुत अच्छा किए हैं। गुरु जी ने ये नहीं कहा कि कृष्ण भगवान को मारने का जो उपाय आपने किया है वो बड़ा अच्छा किया, ये सोचा है बड़ा अच्छा भी नहीं है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो विचार कैसे सभ्य हो सकता है, वो उचित कोई नहीं सकता। इसलिए कव स्व अवध्य मार्जन, आप अपनी मृत्यु निवारण के विषय में जो कुछ सोच रहे हैं बहुत अच्छा ठीक, परंतु इतना अभिनिवेश मत कीजिए सिद्धि में असिद्धि में सौ। आप ये विश्वास न करें कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन मैं ये कहता हूं कि काम सोच समझ कर करना चाहिए, और अगर सिद्धि मिले तब भी और न सिद्धि मिले तभी सम रहना चाहिए। और गुरु जी के इनडायरेक्ट में कहने का भाव था मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु कृष्ण बलराम जब यहां आएंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी उल्टा हो जाएगा। अब इतना व्याख्या नहीं समझ रहा था, लेकिन बकरू जी ने कहने का सही है। अक्रू जी तो जानते थे कि भगवान आएंगे तो इसका बद तक नहीं, अतः फिर बाद में चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अक्रू जी ने सोचा कि बाद में कृष्ण बलराम यदि आएंगे और पहलवानों का वध कर देंगे, हाथी का वध कर देंगे, तो कभी कौन से ये न सोचे कि ये सारा उत्पात अक्रूर करा रहा है, ये नहीं लाया होता तो हमारे आदमी नहीं मारे जाते मथुरा में, यही सब गड़बड़ी किया, तो हो सकता है हमारे प्रति विद्रोह कर जाए, इसीलिए उन्होंने पहले ही कह दिया। अगर ऐसा समय होगा, मान लीजिए भगवान गुंडा पर हाथी को मार देंगे, पहलवानों को मार देंगे, रजत को मार देंगे और धनुष की रक्षा करने वाले सबको मार देंगे, धनुष जब क्या चल रहा था धनुष को उत्तर कर भगवान ने कह दिया सारा जब खत्म हो गया। तो अगर कंस कहेगा कि तुम इन दोनों को लाए इसी से उत्पात हो रहा है, तो वह क्यों जी कह सकते थे कि राजन ने उस दिन कहा था कि सिद्ध सिद्ध समान हो गया, मैं कहा था ना कि सिद्धि और सिद्धि में स्वाम रहना चाहिए। तो अपनी भविष्य में रक्षा के लिए भी अक्रूर जी ये बात कह रहे हैं। जो भी हो सोचता है अभी ठीक सोचता है तो मृत्यु टालना चाहिए, लेकिन यहाँ सिद्धि का क्या अर्थ है, वहाँ स्व अवध मार्जनम से इसका कनेक्शन है। अब मृत्यु टालने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो सकता है न टले, इसको असिद्धि कहेंगे, हो सकता है नॉट टले, और आप कह ही रहे कि राम कृष्ण के हाथ से मेरी मृत्यु है तो उनको निकट बुलाएंगे, कहीं ऐसा न हो कि उनके हाथ से आपको मरना पड़ेगा, जो कुछ भी हो सम रहे थे, अपनी हितैषिता प्रकट कर रहे थे अक्रूर जी, जिसे उनको भेज अन्यथा भेज रहा है कि ये अपना इंटरेस्ट न दिखाए तो सनक जाता है, नहीं दूसरे को भेजे इसको कोई उत्साह नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अक्रूर जी अपने भाव को छिपा रहे थे, उनको यह भी भय था कि कहीं हमारे प्रेम भाव को हमारी भक्ति को जान जाएगा तब भी नहीं भेजेगा, कई बार ये भाव ये तो उसका भक्त है, ये क्या करते तो और मिल जाएगा इसलिए भी नहीं भेजे, तो दोनों ओर से छिपाना है, तो छिपाना चाहते थे। अब मैं तो तथापि आद्यम करूंगी थे अक्रूर जी दिखा रहे थे कि मेरे तो कोई ऐसे खास वहां जाने का ऐसा विचार नहीं था, लेकिन आपके प्रयोजन के लिए मैं जाऊंगा, जबकि अब कंस का प्रयोजन नहीं था वहां जाने के लिए, तुमका अपना प्रयोजन था। ये सब नीति के विचार कब कहां कैसे बोलना चाहिए, तथा की आज्ञा करोगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जैसे लगता है कि आज्ञा से ही जा रहे हैं, नहीं तो इनको जाने की अपनी स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं, अपने भाव का संगोपन कर रहे हैं। जगवंतम राज्य नीति शास्त्र अनुरूप नवोन्नति करना के विचार है। सिद्धौ असिद्धौ च समः संकुर्यत् कर्म आचरेत्। मुज मनोरथे सिद्धे अति हृष्टो न स्यात् और असिद्धे आर्तः न स्यात्। मनोरथ सिद्ध हो तो फूलना नहीं चाहिए और मनोरथ विफल हो जाए तो रोना नहीं चाहिए, मनुष्य कैसे रहना चाहिए। कुतः दैव निज दृष्टम एवं फलम भावयति तब पुरुष कारण किम से न किम अथवा समम की क्रिया विशेषण। समम कुर्या का समम कुर्या, यदि समम शब्द होगा तो क्रिया विशेषण है। सम मनोभाव क्रिया में सफलता असफलता में समान और सम रहेगा तो कर्ता का विशेषण है। दोनों का अर्थ एक ही है, समह चाहे सम उसी को विचार है। मनोरथान करो तुच्छ जन दैव हता युजते हर्ष शोकाभ्याम तथा त्याग्याम करो करो मिते। तो मनुष्य विविध मनोरथ करता है और हर्ष शोक से युक्त होता है। कदाचित हर्षेण युजते मनोरथ सिद्ध, तो मनोरथ सिद्ध होता है तब हर्षित होता है और कदाचित शोके ने जुट जाते तब असिद्ध। मनोरथ सिद्ध नहीं होता है तो शोक से युक्त हो जाते। अतस्तत्र नैयत्यम नास्ति, फले दैवस्य प्राधान्य। तो कोई नैयत्यम का अर्थ है निश्चित नहीं है कि सफलता मिलेगी, क्योंकि दैव की प्रधानता है फल देने में। तस्मात तत्राभिनिवेश न कार्य की भाव एवं दैवम पुरुष कारण अतिक्रमित इति नीति शास्त्रोक्तम परिहित। नीति शास्त्र कहता है कि दैव को पुरुषार्थ के द्वारा दबाया जा सकता है। कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए गए हैं शास्त्रों में, कोई कोई कभी कभी पुरुषार्थ की प्रशंसा की है। मनुष्य यदि करे तो वह फल पा जाएगा। महाभारत में एक कथा है, महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बैठे थे मन में और महारानी द्रौपदी से बात हो रही थी। तो महाराज युधिष्ठिर दैव पर बहुत बल दे रहे थे, जो ईश्वर लिख दिया है वही होता है, लेकिन द्रौपदी जी पुरुषार्थ पर बोल रहे थे। नहीं ऐसे दैव के भरोसे चुपचाप बैठे रहने से कोई काम नहीं है। कह रही थी द्रौपदी जी की बादल वर्षा करता है, ईश्वर वर्षा करता है, लेकिन कोई खेती न करे, खेत न जोते, बीज न डाले तो क्या ऐसे देवता के बरसने से हो जाएगा सब। हमारा जो ऋषि कहता है ठीक है, मनुष्य खेत जोते सब करे बीज भी डाले और वर्षा नहीं होगी तो तभी विचार हो रहा था कि तब दैव और पुरुषार्थ दोनों का संयोग करना चाहिए, लेकिन अंततः दैव बलवान है। मनुष्य कुछ भी करे, कल तो वैसे देखा जाता है कि योजनाएं सफल नहीं होती। तो भाव है कि जिज्ञते हर्ष शोका घनिष्ठात है कि महाराज जब सफलता मिलती है तो व्यक्ति हर्ष से युक्त होता है, विफलता मिलती है तो शोक से। तब मनोरथ असिद्ध्या शोक एवं फलिष्यति इति गुण होता है। आपका मनोरथ पूरा नहीं होगा इसीलिए आप शोक में ही डूबेंगे, ये भाव तक डूबेंगे। दोनों बात करेंगे, हर शोक से व्यक्ति युक्त होता है, लेकिन उनका भीतरी भाव यह था कुर जी का कि आप तो शोक नहीं देते, क्योंकि आपका मनोरथ पूरा नहीं होगा। अतः तत्र यद्यपि जत्न कर्तृ न विद्यते, आपको शोक ही होगा, आपका मरण हो जाएगा कृष्ण बलराम के आने से, तो इस कार्य को करना मेरे लिए उचित नहीं है। भीतर भाव रहकर बोल रहे हैं, जब मैं जाऊं कृष्ण भगवान को लाऊं और आकर के मैं आपको मार दूं, तो यह करना उचित नहीं है। तथापि ते आज्ञा करो, तू भी आपकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि तद बस वर्तित्व अध्ययन करो भी कर कुछ भी जो भी हो, मैं तो आपका दास हूँ, आपका अनुचर हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। एक प्रकार से उन्होंने साफ कह दिया कि आप जो मनोरथ कर रहे हैं उसमें से एक भी पूरा नहीं होगा, आप खत्म होंगे, तो फिर भी आप मैं आज्ञा का पालन करूंगा, तथापि अध्ययन करूंगा। तथा अपि शब्द बता रहे, ऐसा होने पर भी यदि ये काम ठीक नहीं है, उसको जो आप भेज रहे हैं, भेज करके कृष्ण बलराम को बुला रहे हैं, ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जाना तो इनको अपने ही लालसा से था, बहुत खुश थे, लेकिन राज अधिकार क्या आप करें, आने पर तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी आपके आज्ञा का पालन करूंगा। एवं तो आज्ञया एवं तत्र प्रयामी नी स्वेच्छा आई थी स्वस्थ भाव से संगोप में, क्योंकि आपकी आज्ञा से ही जा रहा हूं मैं, अपनी इच्छा से नहीं, ये सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए मैं तथा की आज्ञा करूंगी। स्वाभिमतम संगोपनार्थी, इस प्रकार अक्रूर जी जो उपदेश दिए, यद्यपि यह उपदेश कंस को दिया गया है, लेकिन हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने पर इसको लागू करना चाहिए। शास्त्र में इसीलिए उपदेश दिए गए। एक बार बंबई में मैं कथा किया था शुरू में, भगवान के जन्म की कथा, तो वसुदेव जी इस कथा में उपदेश दे रहे थे कंस को, तो कंस ने नहीं माना और सारा उपदेश विफल हो गया। तो बाद में एक भक्त ने प्रश्न किया कि जब कंस उपदेश को माना ही नहीं, तो इस उपदेश को भागवत में रखने की क्या आवश्यकता है, विद्या जी ने इस उपदेश को क्यों रखा, उसको इतना समझ में नहीं आ रहा था कि विद्यार्थी कहते हैं कि भागवत पढ़ो ये करो, तो वो सब आज्ञा हम लोगों के लिए, वास्तव में कर्ण के लिए आज्ञा नहीं थी, उपदेश नहीं था, उपदेश जेम करते हुए रख दिया गया है हम लोगों के लिए, हम पढ़ें और समझें, क्योंकि छोटे या बड़े हम सभी कर्ण से ही हैं। एक माने में इतना भगवान से विरोध नहीं है, लेकिन जीने की बहुत लालसा है ना, सबको जीने की लालसा है और सुख से जीने की लालसा है, और सबके दृष्टि में उसके कुछ कंटक हैं, वो चाहे अपने परिवार के लोग हों, चाहे दूसरा देश ही हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ कंटक हैं कि ये हमारे भोग में बाधक है, ये हमारे खिलाफ चल रहा है, हमारे ये चल रहा है, इसको दबाना है, इसको मारना है, ये करना है, और हमारे कुछ अपने हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पिताजी हैं, और हमारे ससुर हैं, जैसे वो सोच रहा था जरा संगमम गुरु, तो हमारा मतलब ये सब जिए, ये सब सुखी रहे, और विपक्ष वाले सब मर जाए, दुखी हो जाए, यह विचार है मनुष्य मात्र का। भगवान ने गीता में इसको आसुर विचार कहा, बहुभूत सर्ग लोकस्मिन दैव आसुर एव च, तो दैवो विस्तरतः प्रोक्त आसुरम पार्थिवेश्म। भगवान कहते हैं कि दो प्रकार के जीव यह रहते हैं, खासकर मनुष्यों के बारे में बोल रहे हैं, भूत सर्ग वो कोई पशु पक्षी जानवर के लिए नहीं बोल रहे हैं, वास्तव में मनुष्य के विषय भगवान कह रहे हैं। दो प्रकार के मनुष्य हैं, दैव और आसुर, कुछ दैवी गुण वाले हैं, तो उनके विषय में तुम्हें विस्तार से कह चुका है। आसुरों पार्थ में सुनो हे प्रथा पुत्र, अब आसुर भाव वालों के विषय में सुनो। भगवान इस तरह से विस्तार करके बात कर रहे हैं गीता के 16वें अध्याय। हमको तो बहुत याद नहीं है। इसलिए भागवत सप्ताह में एक नियम है कि वक्ता को अपने पास से कुछ ऐसा हेल्पर रखना चाहिए जो बीच में श्लोक बताया करे, ऐसा लिखा गया है पद्म पुराण में। भगवान कहते हैं प्रवृत्ति च निवृत्ति च न जना विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यम ते सुधि। भगवान कहते हैं कि असुर जो होते हैं उनके उनको ये ज्ञान नहीं होता है किस काम में लगना चाहिए और किस काम को छोड़ना चाहिए, नहीं करने लायक काम को करने लगते हैं। भगवान के कहने का आशय ये है केवल अज्ञान मात्र नहीं है, नहीं काम जो करना चाहिए उसमें लगे रहते हैं और जो करना चाहिए उसमें बिल्कुल उनकी रुचि नहीं होती। प्रवृत्ति विचार निवृत्ति विचार, प्रवृत्ति का अर्थ है करने लायक काम नहीं करते और निवृत्ति जिस काम से निवृत्त होना चाहिए छोड़ देना चाहिए, जैसे नौ मृत्यु जो है इसको निवृत्ति करते। तो उनको न तो प्रवृत्ति मालूम है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए और न ये मालूम है कि तमाशु आदि नहीं खाना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं, जो करना चाहिए उसको नहीं करते, और न शौच उनमें कोई सफाई शुद्धि नहीं होती है, न आंतरिक शुद्धि न बाह्य शुद्धि और न आचार विचार और न स्वास्थ्य, न शौचम न पिचाचार सत्यम ते शुद्धि। चाहिए तो है ही और उनके विचार क्या होते हैं और बोलते क्या रहते हैं इसको भी भगवान कहते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहु रविश्वर अपरस्पर संभूतम की मन में काम है, खुलम खुला बोलते हैं संसार बाई चांस हो गया, इसको कोई रचने वाला नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, अनिश्वर जगत आहुल अनिश्वर इस विश्व को कहते हैं कि अनिश्वर है, मतलब इसको कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई दंड नहीं देगा, जिसके मन में जो करना हो करो, कोई बनाने वाला नहीं, और इस संसार को उत्पन्न करने में कोई कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, यह केवल स्त्री पुरुष के संयोग से संसार बना हुआ है और संसार जो उत्पन्न हुआ है वह केवल इंद्रिय सुख देने के लिए बना हुआ है, भोग हो बस। ये भगवान कहते हैं कि आसुर विचार वाले ऐसे बोलते हैं जैसे कौन से बोल रहा है, इसको मार करके ऐसे जीऊंगा ये करूंगा वो करूंगा, यही प्लान चलता रहता है सारी दुनिया। एकाम दृष्टि अवस्तव्य अवस्तव्य नष्टात्मान बुद्ध है प्रभवन उग्र कर्माण छया जगत ही का। भगवान कहते इसी दृष्टि में अवस्तव्य कि ईश्वर नहीं है और ये संसार जो बनाया गया है भोगने के लिए बनाया गया है, इसलिए हम स्वतंत्र है वास्तव में, और हैं लोग बोलते हैं असत्य ये संसार है ही नहीं वास्तव में, ये झूठा है मिथ्या असत्य और इसमें कोई ईश्वर नहीं, इसी दृष्टि में टीके रहते। दृष्टि का अर्थ है समझ ज्ञान, बस उनका यही ज्ञान। अवस्तभ्य अवस्तभ्य का अर्थ होता है बिल्कुल टीक जा रहा है, इसी विचार में टीके रहते हैं। नष्ट आत्मा वो आत्मघाती जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं, अल्प बुद्ध है बहुत थोड़ी बुद्धि वाले, बहुत भयानक कर्म करते रहते हैं, छया है जगत अहित ये जगत के अहित जीवों के महाशत्रु, ये सब वही कर्म करते हैं जिससे संसार नष्ट, इसी कर्म में लगे रहे। आज के युग में भगवान के इस वाक्य को प्रकट समझा जा सकता है किस तरह छाया क्षय के लिए काम करते हैं, सब विभिन्न प्रकार के बम बना लेना, विस्फोटक द्रव्य इकट्ठा कर लेना, क्षय करने में बहुत तेज है, यहाँ बम विस्फोट करो यहाँ करो ये करो वो करो तो छया प्रभवंती उग्र कर्म, बहुत भयावह कर्म करते हैं, जीवों की हत्या करना या मनुष्यों की हत्या करना, कहीं भी किसी को मारो कुछ भी करो, प्रभवंत उग्र कर्म उग्र कर्म भयानक कर्म करते हैं। जीवों का वध इतने बड़े पैमाने में संसार में हो रहा है, देख कर सुन करके कलेजा कांप जाता है और चलता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आसुर विचार वाले लोग बन गए, इस तरह से आसुर विचार का मूल कारण है ईश्वर की सत्ता को न स्वीकार करना। यदि कोई व्यक्ति माने कि भगवान है और जगत के उत्पादक हैं, इसको नियमन में रखते हैं, इसका पालन करते हैं, तो व्यक्ति डरेगा ईश्वर से। कुछ लोग तो कहते हैं कि ईश्वर का प्रचार करने वाले लोग मनुष्यों को बेकार कर देते हैं, क्योंकि मनुष्यों के मन में भगवान का भय छा जाता है, इसलिए कोई काम नहीं करता है। ऐसा कहते हैं, ये ईश्वर का भय दिखाना ठीक नहीं है, छोड़ो स्वतंत्र सब लोग काम कर। लेकिन वो तो पूरा भवन की उग्र कर्मा छया है जगत कामों आश्रित दुष्पूरण दम्भ मान मदान होता है। भगवान का आग्रह दम्भ मान और मद से युक्त रहते हैं और उनकी कामनाएं तो कभी पूरी नहीं होती। कामम आश्रित दुष्पूरण मोहा विषित गृहत्वा असद ग्राहक प्रबंध असुचित रहता है और मोह छाया हुआ रहता है आश्रम के मन में। मोह का अर्थ है मैं ये देह हूं और देह के अनुगत मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा देश है, मेरा 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 करते रहे, सो मोह कहा गया। इस मोह पर आधारित उनके कुछ असद ग्राह होते हैं। ग्रह का अर्थ होता है दृढ़ विचार, हमें ये प्राप्त करना है। असद ग्रह भगवान का असद आग्रह मन में बसा होता है, हमें ये लेना ही है, हमें इस तरह से भोजन करना है कि हमारा शरीर मोटा हो तंदुरुस्त हो। इसके लिए चाहे पक्षी मारा जाए, पशु मारा जाए, कुछ भी हो, हमको अपना शरीर पोषना है। इसमें मोह कहते हैं ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ देह है और ये टिकेगा नहीं बहुत काल तक। मनुष्य को सोचना चाहिए जितना दिन भगवान जिंदगी दिए हैं, ठीक ठीक पदार्थ खा करके, भगवान का प्रसाद खा करके, रूखा सोता ही हो तो क्या ये शरीर चला लेना ठीक है। लेकिन भगवान के नियम की अवहेलना करके किसी का मांस डालना मुख में और शराब डालना ये उचित नहीं है, इसका बहुत घोर दंड भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि मोहा गृहीत्वा असद ग्रहण, मोह से शरीर में अक्षय अहंता और परिवार में ममता होने से बस वही असद ग्रहण में लग रहते हैं। हमको ये खाने को चाहिए, हमको यह चाहिए, हमको चाहिए, हमको ये चाहिए, केवल भोगना जानते हैं असद ग्रह। और सबका मूल कारण है मोह अज्ञान। इस तरह से असुर पड़े रहते कौन सके। इस प्रसंग में ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही है भगवदगीता की बात। मोह मोहा गृहित्वा असद ग्रहण प्रवर्तन्ते असुचि व्रतम्। असद ग्रह या आग्रह जिसको कहते हैं मनुष्य के मन में बसा होता है। मनुष्य के मन में आग्रह छाया रहता है कि हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। और वो कामों आश्रित दुष्पूरण वो वस्तु उनको मिल भी जाते हैं तो उसे संतोष नहीं होता है, पूरे संसार को टेक ओवर करना चाहते हैं, यहां तक कि स्वर्ग को भी करना चाहते हैं। पहले के असुरों का विचार दिया गया है भागवत में, कई बार अटैक करते हैं स्वर्ग पर भी, द्वारा इंद्र को हटना पड़ता है जो भगवान के प्रतिनिधि। ये आसुर भाव सर्वदा इंद्रिय तृप्ति और शरीर को अजर अमर रखने के भाव। भगवान जो नियम बना दिए हैं तो उस नियम का पालन करना चाहिए। और कोई कितना भी शरीर की रक्षा करना चाहे क्या कर सकता है। जैसे हिरण्यकश्यपु है तो वो तो बहुत बहुत उपाय किया, बहुत उपाय किया कि मैं न मरूं, एक क्षत्र सम्राट रहूं, मेरे सामने कोई युद्ध में न टिके। और ब्रह्मा जी ने कह भी दिया ठीक है, लेकिन भगवान नरसिंह देव ने सब कुछ समाप्त कर दिया। कौन से जरासंध, शिशुपाल या हिरण्यकश्यपु ये असुरों में सरदार कहे जाते हैं, लेकिन इसी प्रकार की प्रवृत्ति वास्तव में इसमें बहुत ज्यादा है मनुष्य में। असुर विचार चिंता मेय प्रलयांता उपाश्रित चिंता अपरिमेय अनंत चिंता, चिंता का कोई वर्ष नहीं होता है। चिंता बनी रहती है, ये नहीं मिला, ये मिलना चाहिए। जो नहीं मिली हुई वस्तु होती है उसके विषय में जो थिंकिंग है उसको चिंता कहते हैं। ये भी लेना है, ये करना है, वो करना है, उसको भगवान पर अपनी। तो वो भी मान लीजिए जवानी में दो चार साल के लिए चिंता हुई कि ये लेना है वो लेना है, तब भी ठीक है। भगवान को कहते हैं प्रलयांतर उपासना, चिंतन का विशेषण दे रहे हैं प्रलयांतर, प्रलय तक चलने वाली, प्रलय आप मृत्यु तक वही सोचते हैं, मरने तक संसार को भोगने का ही प्लान रहता है आश्रम का, प्रलयांतर उपासना, चिंता उपास होता है, प्रलयांतर चिंता उपास होता है। कामोपभोग परमा एतावत निश्चित है, कामोपभोग परमा इंद्रियों के सुख के भोगों, इंद्रियों के भोगों में लगे रहते हैं, खाना पहनना सुंघना देखना छूना इसी में लगे रहते हैं। बस परमात्मा से परायण उनके जीवन का लक्ष्य होता है कामोपभोग, कामोपभोग परमा। और इतना ही नहीं, ये कावत इतनी निश्चित है, जो कहते हैं बस बस यही जीवन का फल है, खाओ पियो मौज करो बस, यह कावत इतनी निश्चित है, थोड़ा भी संदेह उनके मन में नहीं होता, इतने मूर्ख है। थोड़ा भी संदेह होता है भाई मृत्यु है और जीवन का ये लक्ष्य नहीं है, कुछ तो सोचते, लेकिन इतनी निश्चित है, इतनी निश्चित है बहुत ही, जैसे किसी वस्तु पर सील मुहर लगा दिया, जबरदस्त बताओ कुछ नहीं। और ईश्वर का भजन करने वाले, भगवान के भजन करने वाले लोगों को वो समझते हैं ये सब क्या हो गया है, क्या कर रहे हैं। कभी कभी तो किसी बच्चे को यदि भक्त बना दिया जाता है तो अशुभ को कहते हैं क्या सीखा है, ओह इसको इंजॉय करने से मना कर दिया, इसको भोग भोगने से मना कर दिया, इसका तो जीवन ही नष्ट हो गया। और कहते हैं कि ईश्वर का भजन वे लोग करें जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूंढे हैं, बाकी जो समाज के लायक हैं उनको तो भोग भोगने चाहिए, इसी के लिए जन्म हुआ है। अच्छा यथावत की निश्चित इस विचार में वो दृढ़ रहते हैं, उनको कोई बिगा नहीं सकता, इतनी निश्चित है। बहुत सी पुस्तकें लिखे हैं, बहुत प्रचार करते हैं, इसके लिए जीवन है, इसके लिए जीवन, आशा पास सतय बद्ध है, मोह काम क्रोध समास होता है, सब कुछ है कि आशा पास सतय बद्ध है, काम क्रोध पराया, अनेक आशाओं में बंधे रहते, आशा का बंधन लगा रहता, आशा पास सतैर बद्ध है, ये पाना है, ये करना है, यहाँ जाना है, यह करना है, लेकिन मनुष्य का यह कर्तव्य नहीं है वो हमेशा आशा में लगा रहे, फिर निश्चिंत होकर कुछ समय भगवान का भजन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम प्रकार का दृश्य, मतलब संतोष कैसा होता है, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, भगवान के धाम में कुछ कुछ झलक इसकी मिलती रहती है। जैसे वृंदावन धाम है, अभी अभी सावन बीता है, कोई भी व्यक्ति घुमा होगा और देखा होगा तो हजारों हजारों साधु महात्मा कहीं अन्न बांटा जा रहा है, कहीं रासलीला हो रही है, कहीं कथाएं हो रही है, जो भी हो अपने तरीके से हो, लेकिन यह एक मार्ग है कि छोड़ो संसार के भोगों की लालसा, भगवान का भजन। तो हजारों हजारों लोग रासलीला में बैठते रहते हैं, भगवान को देखते हैं, अभिनय देखते हैं भगवान का, यही मार्ग वास्तव में सुनिश्चित है। पर कुछ ऐसे रजोगुणी स्थान है इस पृथ्वी पर, ज्यादा ऐसे हैं, ऐसे रजोगुणी स्थान, वहां पर शांति से बैठ करके भगवान का नाम नहीं ले सकते, वे स्थान रजोगुण भरते हैं और अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती है कि हमको ये मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए। पर वृंदावन धाम ऐसा है कि यहाँ पर घूमने पर इच्छा हो जाती है, वो हो ये लोग कितने भाग्यशाली हैं, ये कथा में बैठे सैकड़ों जगह कथाएं होती हैं, ये कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान की लीला देखते हैं, अभिनिविष्ट रहते हैं। भक्त है राधा जीवन प्रभु कलाक्षवा से आए थे यहाँ, तो वे एक दिन गए अपने पुत्रों के साथ रास लेकर के, मैं आया लास्ट ईयर की बात है, उससे पूछा मैं छोटा बच्चा था श्री राम नाम, तुम क्या देखे वृंदावन में, तो कहते रियल कृष्ण, रियल कृष्ण इंग्लिश में बोलता है, तो मैं पहले नहीं समझ कि रियल कृष्ण क्या कर रहा है, वास्तविक कृष्ण में बोलता था रियल कृष्ण, ऐसा रियल कृष्ण, रियल कृष्ण देखे कहां पर थे, जो वो नाच रहे थे दिवस उठा था राजे, रियल कृष्ण, उसको एक भव विश्वास था कि वही कृष्ण है, छोटा सा बच्चा है रियल कृष्ण देखता है, देखकर के प्रभावित। कुछ स्थान ऐसा होता है वास्तव में जहां पर ईश्वर की आराधना ही होती रहती है, चाहे कोई परिक्रमा कर रहा हो, चाहे भगवत सुन रहा हो, चाहे रास लीला देख रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उसका मन भगवान से जुड़ा हुआ है। और कुछ स्थान ऐसे होते केवल कल कारखाना ठहर 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 चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सामान लोड करो, ये ट्रांसफर करो, यह लोड करो, ये दो वो दो ये दो, और प्रभुपाद जी कहते हर 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 कार्य चल रही है, बस चल रही है, वहां की चेतना दूसरी है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि भगवत धाम का सेवन करना चाहिए, और पांच महासाधनों में एक यह भी है मथुरा वास। आज भगवान के अंतर्हित हुए 5,000 से भी अधिक साधु, लेकिन धाम धाम है वास्तव में, कितने हजारों हजारों जीव हैं आकर के भगवान से जुड़ते इस भूमि में, यह कौन है। तो भगवान ने ये राष्ट्र आसुरी संपदा का वर्णन कर रहे हैं कि आशा पास सतैव, अनेक हजारों हजारों आशा में बंध रहता, आशा भर केवल है, पूरी नहीं होगी, आशाएं लगी रहती है, ये होगा ये होगा, ऐसे जब वोटिंग होता है तो कई उम्मीदवार खड़े होते हैं, जानते हैं कि कोई एक नहीं जीतेगा, लेकिन प्रचार में इतना नारा बोलना, इतना पंपलेट छापना, ये करना, आशा पास होता बंद, और अन्य प्रकार की बहुत बहुत आशाएं होती है, काम क्रोध परायण, काम और क्रोध के ही दास रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, इहं ते काम भोगार्थम अन्याय नार्थम च, और उनके जीवन में क्रिया क्या देखी जाती है, अन्याय रहती अर्थ संशयन इहं, अन्याय से भी उनको पैसा चाहिए, जैसे भी हो बस पैसा चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए घर द्वार जितना, अन्याय ना, इसके तरह भगवान यह कह रहे हैं कि ऐसा ऐसी बात नहीं है कि मनुष्य को पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, वस्तु कमाना चाहिए, लेकिन न्याय, न्याय का अर्थ उसके लिए जो शास्त्रों में आज्ञा दी गई है, ऐसे काम करे, बिजनेस करे या सर्विस करे, ये करे वो करे, ऐसे ढंग से जब कमाए तो उसको न्याय की कमाई कहते हैं, भगवान कहते हैं अन्यायी न अर्थ संचय, यहां अर्थ संचय करते हैं। ये बात हम लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, विशेष करके पश्चात देशों में, किस तरह से लोग केवल अर्थ संचय पर पड़े हुए हैं, और सब छोड़ करके मरने के लिए। एक बार एक व्यक्ति कह रहा था कि एक माता जी मरी शहर में अलक्षवा में, तो वो अपने बिल्लियों के लिए $3 मिलियन दी, $30 लाख बिल्ली के लिए, और उनके रहने के लिए जो घर था बंगला था वो तो था, तो इस तरह का विचार। खैर वो तो दया ही माने जाएगी कि बिल्लियों के लिए बिल्ली के लिए, क्योंकि तो उसके कोई संतान था नहीं, बिल्ली पोसी के चार बिल्लियां $3 मिलियन। ये सरकार कहा भी ये सब लुखी था, उसको दूसरा कोई नहीं निकाल सकता, निकालने वाले तो मनुष्य होंगे लेकिन ले लेकर को बिल्लियों की सेवा में देते रहते। वो तो पता नहीं न्याय अन्याय क्या था, लेकिन वास्तव में अन्याय से धन नहीं कमाना चाहिए, वो धन बुद्धि को नष्ट कर देता है। अन्याय अर्थ संशय, फिर सब कुछ मनुष्य करे लेकिन भगवान कहते हैं कि पतंति नरके सुचल। वो श्लोक कैसे है, कम प्रसक्ता काम भोग इस पतंती नरके सुचल। लेकिन भगवान ने कहा कि जितने भी काम भोग में आसक्त लोग हैं, इंद्रिय तृप्ति ये असुचल नरके पतंती, ये सब नरक में गिरते हैं, तो प्लान सफल नहीं हो पाता है, और सूची नरक में गिरते हैं। इस पर एक बार एक भक्त ने पूछा, सभी कुछ सूची नरक भी होता है क्या? नहीं, भगवान नरक का ही विशेषण दे रहा है, नरक मात्र ही असूची है, बहुत खराब जगह है, वहां एक बार भी आज तक जब से नरक बना झाड़ू नहीं दिया गया है। यह जहां तहां मल मूत्र भरा हुआ है और हड्डी आदि चुकी रहने को सताया जाता है, असूची नरक में गिरते हैं। और इस तरह से अहंकार बलम दर्पम, अहंकार बल दर्प काम क्रोध के प्रायण होते हैं, तो ऐसे लोग ममात्व पर देह से प्रदूषण जसू लेता है, अपने देह में उनके देह में भी मैं रहता हूं, दूसरे के देह में भी मैं रहता हूं, लेकिन मुझसे द्वेष करते हैं, मुझे नहीं मानते हैं। तो तान अहम दुष्तान कुर्रन संसार रेशम राधमान शिकाम अजस्र असुधान आश्रुषी एवं जोनिश, तो मैं ऐसे लोगों को आश्रुई जोनियों में ही पटकता हूं। आश्रुई जोनि मापन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मन माम अप्राप्य एवं कौनते तथो जानत अधमान गति। इस तरह से नरक में भगवान तो पटकते ही हैं, फिर अधम जोनियों में जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि काम क्रोध लोभ से बचने से। मैं जब कंस की बात कह रहा था तो इस असुर संपदा का ध्यान आया, तो मुझे तो याद नहीं है, चाहिए भक्तों को भी इसको मिला करके और समाज में इस बात को कहना चाहिए, क्योंकि भगवान पहले कह चुके कि दैवी संपद विमोक्ष है बंधाया असुरी होता है, असुरी विचार से बंधन होता है, बहुत दुख होता है। और यहां भी कहते हैं कि प्रसक्ता काम भोगों से पतंती नरके सुचल, नरक में गिरते हैं। किंतु जितने मनुष्य हैं ये सब अपने लिए नरक का रास्ता खोज रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो अप्रस्तुत कराइए कि कंस से अक्रूर जी बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि राजन समभाव से काम करना चाहिए। तो वास्तव में अक्रूर जी का जो उपदेश है वो हम लोगों के लिए है और बहुत ही उपाध्याय है, फर्स्ट क्लास का उपदेश, ग्रहण करना चाहिए। ये मान कर चलना चाहिए कि भगवान हमारे लिए जो कोटा किए हैं, जो निर्धारित किए हैं, मिल करके ही रहेगा, और जो नहीं किए हैं तो हम केवल अन्याय करके पाप की गति ले जाते हैं, भोग मिलते नहीं, नहीं मिलेंगे। शुभ आदमी का एक अच्छे आदमी का कर्तव्य है जो भगवान के अनुशासन में रहा है, और जो चीज जैसे भगवान का अच्छा है उसको ऐसे स्वीकार करते हुए ही चलना चाहिए। कोई कितना भी प्रयास करे तो शरीर को तो अजर अमर बना नहीं सकता है, शरीर बूढ़ा होगा ही और शरीर एक दिन जाएगा ही। कौन से जैसा व्यक्ति ये सोचे कि नहीं नहीं किसी भी तरह से मैं नहीं मरूंगा, शरीर को बचा करके ही रहूंगा, और केवल अपनी दृष्टि अपने लोगों में हो, जयसंघ में द्वीद में संबर में और बाण में जिसकी दृष्टि है, ये हमारे अपने हैं। उसके मुख से निकल रहा था कि संवरो नरको बाणो मय्य वकृत सौहृदा मय्य व मुझको ही वो मानते हैं, मुझसे ही प्रेम करते हैं। ये कौन अच्छे व्यक्ति प्रेम कर रहे हैं तुमसे? ये सब संवरो नरको बाणो ये सब खाव थे, असुर थे, इन सब का वध किया गया। बड़ासुर का तो वध नहीं हुआ लेकिन उसकी भुजाओं को भगवान ने काट दिया और नरकासुर का वध किया प्राग ज्योतिषपुर में और सुंदर का वध किया प्रद्युम्न जी जो मारे गए। और इन सबके विषय में कंस कह रहा है हमारे हितैषी हैं, ये हैं, ये हैं, इनकी सहायता से मैं सबको मारूंगा, विपक्ष को और पृथ्वी को भोगूंगा। इस तरह का थिंकिंग, इस तरह का विचार बहुत दूषित चेतना का परिचय है। भगवान में मन लगाने को सोचना चाहिए कि जब इतना जप करूंगा, इतना भागवत पढ़ूंगा, इतना साधु सेवा करूंगा, इतना यहां दान दूंगा, परिक्रमा करूंगा, ये करूंगा, जैसा अक्रूर जी मनोरथ करते हैं वही वास्तव में सीखना चाहिए। कम से कम मनोरथ जो यहां वर्णन किया गया तो इसको शास्त्र में हेय कहते हैं। संस्कृत में हा शब्द का अर्थ होता है छोड़ त्यागना और हे शब्द का अर्थ होता है त्याज, त्यागने लायक। और उपादेय शब्द है इसके विरुद्ध, उप आदे, आदे का अर्थ ग्रहण करने लायक, उप का अर्थ है प्रेम से, निष्ठा से ग्रहण करना चाहिए। जब किसी विचार को हम ग्रहण करते हैं अपना हित समझ करके तो उसको उपादेय कहते हैं और जिसको अहित समझ करके छोड़ते हैं उसको हे कहते हैं। तो शास्त्रों में दोनों विचार इसीलिए दिए गए हैं कि हम ग्रहण कर सके और छोड़ सके, क्योंकि ऐसा विचार जैसे छोड़ने वाला विचार है। कंस को दिखाया गया कि वो इस तरह से मनोरथ कर रहा है, इस तरह से प्लान बना रहा है, सब गलत है। तो मनुष्य को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा प्लान नहीं बनाना चाहिए, और अक्रूर जी जैसा विचार रखना चाहिए। तो आते ही इस वृंदावन धाम में हम लोग आते हैं, ट्रेन पर बैठे या घर से चले, तभी मनोरथ हो कि ऐसे परिक्रमा करूंगा। हम करते भी हैं, प्राय लोग ऐसे ही कहते हैं, यहाँ परिक्रमा करूंगा, जप करूंगा, क्लास सुनूंगा, भगवत सुनूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा। इस तरह का मनोरथ बहुत शुभ मनोरथ है और यह बहुत ही उन्नत चेतना का परिचय है। इस तरह रास्ते में सोचते ही आदमी चले तो वास्तव में यही भक्ति है। और सिद्धि की अपेक्षा मनोरथ में अधिक सुख मिलता है। लोक में तो जो लौकिक मनोरथ होते हैं वो तो मनोरथ मात्र ही रह जाते हैं, पूरे तो होते नहीं है। तो जब तक मनोरथ रहता है तब तक वो सुख देते हैं, लेकिन भगवत मनोरथ ऐसा है जो मनोरथ के समय तो सुख देता ही है और फल भी उतना ही आनंदमय होता है। अक्रूर जी जितना मनोरथ करते समय सुखी थे उससे ज्यादा सुखी हो गए जब भगवान का स्वर्ग मिला। लेकिन इस जगत में संसार में ये हिसाब नहीं है। मनुष्य मनोरथ करता है, कहीं मान लीजिए लौकिक मनोरथ करे, मैं वहां जाऊंगा तो ये इस तरह से खाऊंगा, ऐसे सोऊंगा, ये करूंगा, लेकिन जब वो खाता है तो उतना मजा नहीं आता है उसको। ऐसे मिलूंगा, ऐसे बात करूंगा, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, लेकिन जब मनोरथ सिद्ध होता है तो सिद्ध काल में वो सब उतना उचित नहीं होता है कुछ भी। तो मनोरथ काल में वो केवल थोड़ा सुख दे पाता है, सिद्धि काल में नहीं। लेकिन भगवान के विषय में जो मनोरथ किया जाता है वो सब समय सुख देता है, मनोरथ काल में भी और सिद्धि काल में भी। तो यहां पर दो व्यक्ति का मनोरथ ही दिया जा रहा है। कभी कभी मन में शंका हो सकती है क्या जरूरत है कौन से मनोरथ को लिखने की, ये कहने की, किसी भक्त के मन में संशय हो सकता है। लेकिन शास्त्रकार श्रील व्यासदेव भगवान बहुत ही सोच समझ करके इस बात को रख रहे हैं कि यह भी एक नमूना पेश होना चाहिए। जैसे हिरण्यकश्यप का विचार दिया गया है भागवत में, यह कंस का विचार दिया गया, त्यागने में सुविधा पड़ती है इन सब बातों को सुनने से, और ग्रहण करने में सुविधा हो तो श्री गोपीजनों का या राजर्षि भरत जी का और सब भक्तों का विचार दिया गया है, उसे ग्रहण करना चाहिए। और त्यागने के लिए भी कुछ प्रैक्टिकल दिखाया गया है, कि ऐसे त्यागना, ऐसे त्यागना, अगर नहीं तो ये फज्जत होगी, इस तरह से मारे जाओगे, ये होगा, वो होगा, दर्द में गिरना पड़ेगा। तो क्रूर जी उस तरह से समझा रहे थे कंस को कि महाराज इतना अभिनिविष्ट मत होइए, कृष्ण बलराम को मैं ला दूंगा, लेकिन लाने के बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप सब रहिए। और अक्रूर जी का तो मनोरथ सफल हुआ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आपका मनोरथ पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा तो पूरा हो ही है, तथापि आज्ञा करोगे, मैं जानता हूं कि आप मरेंगे आने के बाद भगवान के, फिर भी मैं आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि मेरा मनोरथ तो सफल होगा है, मैं तो ब्रज पथ पर गोकुल में जाऊंगा। मन में सोच रहे थे कुछ भी हो तुम मरो चाहे जीव, हमारा तो काम हुआ है, जो तुम मरने पर ही लात दिए हो तो मैं क्या करूं। यद्यपि इनके कहने का आशय है कि मेरा जाना उचित है ब्रज में, लेकिन कृष्ण बलराम को यहां लाना उचित नहीं है, तथापि आज्ञा करो, फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करोगे, ब्रज में जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, फिर भी कृष्ण बलराम को लाऊंगा ब्रज से मथुरा, आप कह रहे हैं। तो इस तरह से अक्रूर जी कंस को समझाया अपने दोष का मार्जन करने के लिए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, श्री शुकवाच एवं आदिश्य चाक्रूरम मंत्रिणश्च विसृज्य सह प्रवेश गृहम कंस तथा अक्रूर स्वमालयम। इस तरह से कंस अक्रूर जी को, मंत्रियों को और चकार से और सब लोगों को जो वहां रात में मीटिंग में आए थे, जो थे सब एक साथ नहीं, अक्रूर जी से जब बात कर रहा था तो और लोग नहीं थे, अलग अलग कक्ष में अलग अलग फोन रखा होगा, वहीं पर बात कर रहा है, जितने भी शरीर में अक्रूर जी से मिला, उसमें मंत्री से महावक चारों आदि से बड़े हाल में मिला, सब रुके रहे, तुम सब जानते थे कुछ सीरियस मैटर चल रहा है, राजा कुछ मंत्रणा कर रहे हैं, तो सब लोग रुके हुए थे, शायद कहा भी होगा कि अभी आप लोग रुके हैं, हम थोड़ा अर्जेंट बात कर रहे हैं अक्रूर जी से। तो अक्रूर जी से जब बात हो गई तब इसके बाद सबको बहुत आदर से विदा किया, ऐसा कभी विदा नहीं किया, शायद उस दिन अपनी कार दे रहा होगा कि जब छोड़ा इनको, चारू जी को उनके डेरे तक छोड़ाओ, मुस्टिक को भी छोड़ाओ, ये करो वो करो, ऐसा करता होगा, क्योंकि यहां पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि विसृज्य, विसृज्य कार के सबको भेज करके, राजा को यह जरूरत नहीं थी कि सबको भेज करके तब अपने घर जाए, वो राजा अपनी इच्छा से जाएगा जिसको जाना होगा जहां जाएगा, लेकिन आज इसको बहुत गरज थी, बहुत आदर दे रहा था, इसलिए सबको भेजा, ऐसा तो आप तो डर बच गया, रात हो गई, ठीक है सॉरी, आराम कीजिए, आप जाएगा आराम कीजिए, आराम कीजिए, और अपनी गाड़ी दे रहा था, अपना रथ दे रहा था, कहने का सही है कि अब जाइए आराम से, और ध्यान रखिएगा जो मैं कहा उसकी तैयारी में लग जाइए। तो मंत्रियों को, चारों आदि पहलवानों को और बाद में अक्रूर जी को, अक्रूर जी को भी भेजा, तो अक्रूर जी को भेजने का आशय है कि उनको रथ दिया और अक्रूर जी रथ लेकर के घर गए। अक्रूर जी ने कहा कि रथ रहने दीजिए, मैं भोर में आऊंगा तो यहीं से चला जाऊंगा, उनको कि नहीं नहीं जल्दी जाइए और रथ अपने घर ले जाइए, क्योंकि वहां पर जब आप पहुंचेंगे नंदगांव गोकुल में तो ये सब लोग मिलाएंगे कि डिपार्चर कहां से हुआ, अगर हमारे यहां से आप जाएंगे तो सब को शंका हो जाएगी, कंस के घर से रथ चला है, नहीं शुरू से ही अक्रूर के घर से रथ चला हुआ है, ये प्रचार है, इसलिए आप रातों रात ले जाइए, वही वही अपने घर के पास रखिए रात, और आपको रात में जाना हो या भोर में जाना हो, जब भी आपकी इच्छा हो आप स्वतंत्र, लेकिन जल्दी कीजिए, मेरे काम का जल्दी जाइए, शीघ्र जाइए, ले जाइए, बस तो अपनी जीवा लेकर के गए। अब उनको काहे बंदी लाया जाए मनोरथ भगवान को देखने के लिए। तो एकादशी की रात थी, एकादशी को तो वैसे ही जागरण किया जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि रात भर अश्रु बहाते रहे पुलकित शरीर भगवान का कीर्तन किए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और भोर होते ही चल दिए, पारण वगैरह नहीं किए। अब वो खाने की और एकादशी के व्रत की पूर्ति पर ध्यान नहीं गए। अब पूर्ति पर ध्यान देने की जरूरत क्या थी, जिसको भगवान मिलने वाले हैं वो एकादशी देखे। ये एकादशी व्रत से कुछ भी कृष्ण को पाने के लिए किया जाता है, अब जब भगवान मिलने वाले हैं तो अब व्रत पूर्ति करें। घर में चल दिए, अथवा श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि उसी रात में क्यों नहीं गए, वो कहा कि शीघ्र जाइए। तो वो कहते हैं कि वर्तमान ज्ञान आदि ना रास्ते का ज्ञान आदि नहीं था, तो रात में कहाँ जाओ, भी अंधेरी रात थी। चतुर्दशी को शिवरात्रि थी जिस दिन धनुष जग का समापन, तो फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी, वैसे ही रात्रि अंधकार में थे तो इसलिए नहीं गए। अथवा इसलिए भी नहीं गए कि अगर वे रात भर चल करके सवेरे पहुंचते तो सवेरे भगवान वन में चले जाते। ये प्रश्न होता है कि वन में जाकर के भी भगवान से भेंट कर सकते थे, तो नहीं, वहां ऐसा घोड़ा रथ देख करके गौवें भी डूब जाती भागती और भगवान को परेशानी होती, इसलिए वन में नहीं जाना चाहते। उन्होंने उचित समय सोचा था कि शाम को पहुंचूंगा, शुरू से ही ये सब सोचे थे, लेकिन मनोरथ में इतने मग्न थे कि अपने आप ही शाम हो गई। प्लान तो था कि शाम को पहुंचे, उस समय भगवान वन से लौटते हैं गौएं चरा करके, तो अस्थाई मिलन होगा, और गौएं वन में ले जाते समय तो अस्थाई मिलन नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं चाचा जी ओ घर आए हैं तो हम तो गाय चराने जा रहे हैं, ठीक है चलिए आपको बाबा नंद स्वागत करेंगे और हम लोग तो आप 8-10 घंटे के बाद आए, ऐसा हो सकता था। इसीलिए अपूर्व जी शाम को ही पहुंचना चाहते, स्थायी मिलन होगा भगवान से, इसे देखेंगे ऐसे करें। अपूर्व जी इस प्रकार आए अपने घर। अब कथा होगी केसी को कंस ने भेजा था, केसी किस तरह ब्रज में आया और भगवान ने उसका वध किया। तब इस पर नारद जी आएंगे भगवान के पास, जैसे कंस से उन्होंने कहा ऐसे कृष्ण से कहेंगे। और अक्रूर नारद जी के चले जाने के बाद तब देवमासुर का वध करेंगे भगवान। कल एक तीन लीला कही जाएगी केसी दमन, इसलिए भगवान का नाम केशव प्रसिद्ध हुआ ब्रज में। लिखा गया विष्णु पुराण में कि केसी का उन्होंने वध किया, इसीलिए उनको केशव केशव कहना चालू किया लोगों। वैसे केशव का एक अर्थ है कि जो केश का श्रृंगार करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो है केश। अथवा जो ब्रह्मा और शिव के भी नियामक है, तो प्रातः काल केसी का वध किया भगवान ने, यही वृंदावन में केसी तीर्थ किसी घर जिसको कहते। और दोपहर के पहले पूर्वाह में नारद जी आए, और दोपहर के बाद ब्रज में लौटने से पहले भगवान ने देवमासुर का वध किया। इस तरह से आचार्य लोग संगति बैठा। कल के बाद अक्रूर जी का मनोरथ से कहा जाए, कल नारद जी की स्तुति है भगवान के प्रति, बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण जय श्री।